मातृगुप्त जाता है। दृश्यांतर। द्वितीय दृश्य, शमशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि दूर स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त। इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से? मालूम होता है कि सबकी, विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं ना होता तो यह संसार अपने स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है, केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके न रो सकता है और न तो हंस सकता है। जब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा, जिसे हमने सुख शर्वरी की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? प्रपंच बुद्धि को देखकर, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिपकर देखूं। छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम इस किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान। सब जीवन बीता जाता है, धूप छा के खेल सदृश सब गाते हैं। सब समय भागता है प्रतिशन में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगा कर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है, सब गाते हैं। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है, सब। वंशी को बस बच जाने दो, मीठे मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है, सब। विजया, स्वागत। भाव विभोर दुर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी, आह, कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा एककट। राजकुमारी, देखो यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तो चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है, चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच बुद्धि उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि कहता है, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से, हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि, तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारा लाल ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देवसेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका और न करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो, उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिहर उठती है, क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूमकर देखती है। विजया विजया, प्रपंच बुद्धि, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि ग्रहण न करूँगी, उसे भ्रम है, यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़ कर खड़ग उठाता है। पर मुझे ठहरने की अवकाश नहीं, उग्र तारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारा जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़ कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर उपस्थित स्कंदगुप्त का आलिंगन करती है। दृश्यांतर, तृतीय दृश्य। मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टार्क। पुरगुप्त, विजय पर विजय, देखता हूँ कि एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देवी, परंतु तुमको क्या, निर्वीय निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब नहीं जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो? विजया, अहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भट्टार्क, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। द्वारिक, जय हो, एक चर आया है। भट्टार्क, ले आओ। देवारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर, युवराज की जय हो। भट्टार्क, तुम कहाँ से आए हो? चर, नगर हार के हुन स्कंधाबार से। भट्टार्क, क्या संदेश है? चर, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस तो पीछे होगा, पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणाद्रि तथा गोपाद्रि के दुर्गपतियों को विद्रोह करने के लिए धन परिषद की आज्ञा से भेजा गया था। उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन की आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हुणों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। भट्टार्क, ओह, शर्वनाक ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत, हुनराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार्क, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हुणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रित दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और यह लो प्रमाण पत्र। पत्र लिखकर देता है। पुरगुप्त, ठहरो। अनंत देवी, चुप रहो। दूत, तो यह उपहार भी साम्राज्य के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भट्टार्क, और उत्तरापथ के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है? दूत, आर्य महाश्रमण के पास में हो आया हूँ। समस्त सद्धर्म अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। याज्ञिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। वे सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। भटार्क, अच्छा जाओ, नगर हार के गिरिव्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हुनराज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप, यह क्या हो रहा है? अनंत देवी, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार्क, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ, एक पात्र। अनंत देवी संकेत करती है, विजया उसे पिलाती है। भट्टार्क, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भट्टार्क, क्या कहो? सैनिक, वह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में अपना को समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टार्क, अबोध, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवार की ओर दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत हैं, इसलिए मैं कुछ न कहूँगा। भट्टार्क, नहीं तो? सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टार्क क्रोध से, हैं? सैनिक, हाँ, यवनों की उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुनों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयिनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूं जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता है। भट्टार्क, अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा, तुम यही मगध के रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक, अच्छा तो यह खड़ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। खड़ग रख देता है, पुरगुप्त मध्य की सी चेष्टा बनाकर। यह अच्छा किया, आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिए। जाने दो इन्हें, इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी भट्टार को संकेत करती हुई उठती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टार को और अनंत देवी एक और, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। दृश्यांतर, चतुर्थ दृश्य। अवंती उपवन में जप माला और देवसेना। जय माला, तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब गाती है तब मेरे भीतर की रागनी रोती है और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। पहली सखी, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और दूसरी सखी, तो क्या? देवसेना, तुम सभी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत? जयमाला, मेरी प्यारी तू गाती है अहा, बड़ी बड़ी आँखों आँखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है, तू दुखी होती है, ले मैं जाती हूँ, अरे तुम सब इसे हंसाओ, जाती है जयमाला। देवसेना। क्या महारथी हार कर भागे, अब तुम सब शूद्र सैनिक की पारी है, अच्छा तो आओ। पहली सखी। नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी। दूसरी सखी। हाँ तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी। तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होगी। देवसेना। प्रार्थना किसकी किसने की है, यह रहस्य की बात है, क्यों कहूँ, प्रार्थना हुई है मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। पहली सखी। ना कहो तब फिर क्या, हरी हरी कोपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है और क्या। देवसेना। तेरा मुख काला और क्या, निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है, कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती। मुँह फेर लेती है। दूसरी सखी। लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना। क्यों घाव पर नमक छिड़कती है, मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता का चोटने का सुख मिलता है, जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत है, वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। देवसेना की आंखों से आंसू बहता है। तीसरी सखी। हैं हैं क्या तुम रोती हो, मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना सिसकती हुई। नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर ही जी खोल कर रोती हूँ, बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। दूसरी सखी। तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी न कर सकी थी। देवसेना संभल कर कहती है। यही तू भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है, मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ, आंखें प्रणय का लह उत्पन्न कराती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं, मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ। सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालु कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी। आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी है, वेग से भरी है। देवसेना। कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। पहली सखी गाती है। मांझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल माया में अपना बल दौलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूमती आती, ये झटके झेलोगे। माझी साहस है खेलोगे। भीम वर्मा का प्रवेश। भीम वर्मा। बहिन शक मंडल में विजय का समाचार आया है। देवसेना। भगवान की दया है। भीम वर्मा। परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीर गति को प्राप्त हुए, यह बड़ा। देवसेना। वे धन्य हैं। भीम वर्मा। वीर शैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसलिए अभी वे स्कंधावार में ठहरेंगे, उनका आना अभी नहीं हो सकेगा। और भी कुछ सुना देवसेना? भीम। देवसेना। क्या? भीम वर्मा। सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहाँ नहीं है, कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना। सम्राट की महानुभावता है। भाई मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीम वर्मा, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहिन, सिंधु के प्रदेश से मल्लेच्छ राज्य ध्वस्त हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक सामगान होने लगा है। धन्य है हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना, मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे। भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। भीम वर्मा, उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे, मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना, भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो और कामों के लिए तो। भीम हंसता हुआ जाता है। मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल, जो है सो काणाम से करके, यह तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई न मिला तो फुटे ढोल की तरह मेरे गले पड़े। देवसेना, क्या है मुद्गल? मुद्गल, वही वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा, कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम, अपने को कभी भी लगाता था, मेरी कुण गुली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया। शाप दूंगा, एक शाप। दांत पीस कर हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़ दादा बन जाऊंगा, मुझे इस झंझट में फंसा दिया, उसने क्यों मेरा ब्याह कराया। देवसेना, तो क्या बुरा किया। मुद्गल, झक मारा, जो है सो काणाम से करके। देवसेना, अरे ब्याह भी तुम्हारा होता। मुद्गल, ना होता तो क्या इससे भी बुरा रहता। बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यह हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा। सब हंसती हैं। देवसेना, आज कौन सी तिथि है, एकादशी तो नहीं है। मुद्गल, हाँ यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्यान्ह में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना, अच्छा आज तुम्हारा निमंत्रण है, तुम्हारी स्त्री के साथ। मुद्गल, जो है सो देवता प्रसन्न हो, अब आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्य काल बीत न जाए। चलिए मैं उसे बुला लेता हूँ, जाता है। सबका प्रस्थान। दृश्यांतर। पंचम दृश्य। गांधार की घाटी रण क्षेत्र में तुम्हारी नहीं तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश। बंधु वर्मा, वीरों तुम्हारी विश्व विजयिनी वीर गाथा सुर सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हुणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंसता नहीं है। जिनके आतंक से आज विश्व विख्यात रूम साम्राज्य पदाक्रांत है, तुम्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है, जिसे लौटाना हो अभी से लौट जाए। सैनिक। आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है, हम सब प्राण देने आए हैं, खेलनी नहीं। स्कंदगुप्त, साधु तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। चर, परम भट्टारक की जय। स्कंदगुप्त, क्या समाचार है। चर, देव हुन शीघ्र ही नदी पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु वर्मा, और कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा, भट्टार के की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है, खिंगिल के दूत भी आ जा रहे हैं। चक्रपालित उस कुट चक्र को तोड़ सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, तुम कुंभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य से बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी के तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासी सेना से नहीं हटेगा। स्कंदगुप्त, बंधु, यह यश मुझसे मत छीन लो। बंधु वर्मा, परंतु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरी को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं। और बंधु वर्मा, मारने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र में नहीं। आपके रहने से 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे, आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधु वर्मा, शीघ्रता कीजिए, यहाँ हुणों को रोकना मेरे ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है, आपका वहां पहुंचना आवश्यक है। भट्टार्क पर विश्वास न कीजिए। स्कंदगुप्त, मैंने समझा कि हुणों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। बंधु वर्मा, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर न देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है। मालवेश की जय। बंधु वर्मा, महाराज धीराज श्री स्कंदगुप्त की जय। चर के साथ स्कंदगुप्त जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य, शत्रु सेना आती है। हुणों की सेना से विकट युद्ध, हुणों का मारना, घायल होकर भागना, बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था। गरुड़ ध्वज टेक कर उसे चूमना। बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए, विजया विजय, तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय। सब कहते हैं आर्य साम्राज्य की जय। बंधु वर्मा, भाई, स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनके शरण है। सैनिक, महाराज आप क्या कहते हैं, सब शोक करते हैं। बंधु वर्मा, बंधुगण, यह रोने का नहीं आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक, महाराज, बंधु वर्मा की जय। गरुड़ ध्वज की छाया में बंधु वर्मा की मृत्यु। दृश्यांतर, षष्ठ दृश्य। दुर्ग के सम्मुख कुंभाकरण क्षेत्र। चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चक्रपालित, सम्राट, प्रताड़ना की पराकाष्ठा। दो दिन से जानबूझकर शत्रु को इस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंदगुप्त, चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतारना होगा, तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भट्टार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्रपालित, नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए, वह देखिए आ रहा है। भट्टार्क, राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त, क्यों सेनापति, यह क्या हो रहा है? भट्टार्क, आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट। स्कंदगुप्त, या समय की? भट्टार्क, सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है। यह चक्रपालित, विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भट्टार्क, तुम अभी बालक हो चक्रपालित, दुराचारी कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खाता। तेरा भट्टार, सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त, भट्टार यह बालक है, कूट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता। चुप रहो चक्र। चक्रपालित और भट्टार सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त, भट्टार प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण रखना कृतघ्न और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भट्टार चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो? भट्टार, मेरा खड़क साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त, अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरी संकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र, तुम दुर्ग की रक्षा करो। भट्टार, जैसी आज्ञा। नगर हार के स्कंधावार को भी सहायता के लिए कहला दिया जाए तो अच्छा हो। स्कंदगुप्त, चर गया है, तुम शीघ्र जाओ। देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भट्टार का प्रस्थान। चक्रपालित, तो मैं बैठा रहूं? स्कंदगुप्त, भविष्य अच्छा नहीं है चक्र, नगर हार के समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगर हार की ओर प्रत्यावर्तन करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। चर का प्रवेश। स्कंदगुप्त, गांधार युद्ध का यह क्या समाचार है? चर, विजय, उस रण क्षेत्र में हुन नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधु वर्मा नहीं है। स्कंदगुप्त, आह बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय, शोक से बैठ जाता है। चक्रपालित, इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही है, इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त उठते हुए, ठीक कहा। भट्टार के साथ सेना का प्रवेश। स्कंदगुप्त, देखा कुंभा के उस बंध से सावधान रहना, आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुंभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भट्टार, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। भट्टार, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ सैनिकों के साथ जाता है। स्कंदगुप्त, चक्र, दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करें। तुम सावधान, देखो वह हुन आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा। नेपथ्य में रणवाद्य। चक्रपालित, जैसी आज्ञा। जाता है। स्कंदगुप्त, वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है, यह ध्यान रहे, गरुड़ ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए। मगध सेना, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है, घोर युद्ध के बाद हुन भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक ऊपर देखता हुआ, सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हुन सेना कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त, क्या कहा? नायक, कुछ मगध सेना भी वहां है, परंतु वह तो उसका स्वागत कर रही है। स्कंदगुप्त, विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टार। नायक, फिर क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त, दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए, उस पार ही हुन सेना यदि गई तो कृतघ्न भट्टार उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरो, शीघ्र उनसे उसी पार रोकना होगा, अभी कुंभक पार होने की संभावना है। नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त घबराहट से देखते हुए, शीघ्रता करो। नायक, क्या? स्कंदगुप्त, नीच भट्टार ने बांध तोड़ दिया है, कुंभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, चलो शीघ्र, सब उतरना चाहते हैं। कुंभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देते हैं। अंधकार, दृश्यांतर।